वॉल्टर गिनीज, मोयन के पहले बैरन की हत्या, फिलिस्तीन संघर्ष में एक निर्णायक मोड़। 6 नवंबर 1944 को काहिरा की सड़कें एक चौंकाने वाले राजनीतिक हिंसा के कार्य का मंच बन गईं, जिसकी गूंज पूरे मध्य पूर्व और उससे आगे तक फैल गई। वॉल्टर एडवर्ड गिनीज, मोयन के पहले बैरन, मध्य पूर्व में ब्रिटिश निवासी मंत्री, यहूदी उग्रवादी समूह लेही, जिसे स्टर्न गैंग के नाम से भी जाना जाता है, के दो सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई। इस साहसिक कार्य ने न केवल एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता की जान ली, बल्कि एक यहूदी राज्य की संभावित राह को भी पटरी से उतार दिया और फिलिस्तीन में पहले से ही अस्थिर संघर्ष को और तीव्र कर दिया। लॉर्ड मोयन की हत्या ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, ज़ायोनी उग्रवाद और फिलिस्तीन पर नियंत्रण की लड़ाई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बनी हुई है। व्यक्ति: वॉल्टर गिनीज, मोयन के पहले बैरन। वॉल्टर एडवर्ड गिनीज, मोयन के पहले बैरन, 1880-1944, एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता, व्यवसायी, सैनिक और एंग्लो आयरिश गिनीज ब्रूइंग परिवार के सदस्य थे। 29 मार्च 1880 को डबलिन, आयरलैंड में जन्मे वे एडवर्ड गिनीज, इवेक के पहले अर्ल के तीसरे पुत्र थे, जो धनी और प्रभावशाली गिनीज वंश के उत्तराधिकारी थे। ईटन कॉलेज में शिक्षित, उन्होंने नेतृत्व भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, प्रतिष्ठित पॉप सोसाइटी के प्रमुख और नौकायन टीम के कप्तान रहे। 1903 में उन्होंने लेडी इवलिन हिल्डा स्टुअर्ट एर्स्काइन से विवाह किया, जो बुकन के 14वें अर्ल की बेटी थी। दंपति के तीन बच्चे थे, जिनमें उनके उत्तराधिकारी ब्रेन गिनीज, मोयन के दूसरे बैरन शामिल थे, जो बाद में कवि और उपन्यासकार बने। मोयन की विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश ने उनकी कर्तव्य निष्ठा को कमजोर नहीं किया। समकालीनों द्वारा बुद्धिमान, ईमानदार और सार्वजनिक हितैषी के रूप में वर्णित, उन्होंने अपना जीवन सैन्य और राजनीतिक सेवा को समर्पित किया। उनकी विशाल पारिवारिक संपत्ति लगभग 3 मिलियन पाउंड अनुमानित ने उन्हें प्रभाव और स्वतंत्रता प्रदान की, जिसका उपयोग उन्होंने कृषि, आवास और औपनिवेशिक नीति में सुधारवादी हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया। सैन्य सेवा। गिनीज की सैन्य करियर दूसरी बोर युद्ध 1899-1902 के दौरान शुरू हुई, जब उन्होंने इंपीरियल योमेनरी में स्वयंसेवक के रूप में सेवा की, युद्ध में घायल हुए और क्वीन साउथ अफ्रीका मेडल प्राप्त किया। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने मिस्र, गैलीपोली और फ्रांस में लड़ाई लड़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक पहुंचे। वीरता के लिए 2 बार डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर डीएसओ विद बार से सम्मानित, उन्होंने मध्य पूर्व के प्रति आजीवन लगाव विकसित किया। उनकी युद्ध डायरियां 1987 में प्रकाशित एक चिंतनशील सैनिक को प्रकट करती हैं, जिसके पास मानवता और इतिहास की गहरी समझ थी, एक ऐसा व्यक्ति जो साम्राज्य को कर्तव्य और बोझ दोनों मानता था। राजनीतिक करियर। फ्रंट से लौटने के बाद गिनीज ने कंजर्वेटिव राजनेता के रूप में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने लंदन काउंटी काउंसिल 1907-1910 में सेवा की और 1907-1931 तक बरी सेंट एडमंड्स के लिए सांसद रहे। लगभग 3 दशकों के करियर में उन्होंने कई प्रभावशाली पद संभाले, युद्ध के लिए अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1922-1923, ट्रेजरी के फाइनेंशियल सेक्रेटरी 1923-1925 और कृषि और मत्स्य पालन मंत्री 1925-1929, जहां उन्होंने चुकंदर की खेती और ग्रामीण आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1932 में मोयन बैरन के रूप में पियरेज में ऊंचा उठाया गया, उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सेवा जारी रखी। उन्होंने प्रमुख सार्वजनिक जांचों में योगदान दिया, जिसमें 1933 की स्लम क्लियरेंस कमेटी, 1934 की डरहम यूनिवर्सिटी पर रॉयल कमीशन और 1938 की वेस्ट इंडीज रॉयल कमीशन शामिल हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोयन कृषि मंत्रालय के संयुक्त संसदीय सचिव 1940-1941, कॉलोनियों के लिए स्टेट सेक्रेटरी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नेता 1941-1942 और अंत में मध्य पूर्व निवासी मंत्री 1942-1944 के रूप में सरकार में लौटे। इस क्षमता में उन्होंने लीबिया से ईरान तक के क्षेत्रों में ब्रिटिश रणनीति की देखरेख की और क्षेत्र में विंस्टन चर्चिल के वरिष्ठ प्रतिनिधि के रूप में सेवा की। व्यवसाय और अन्य प्रयास। गिनीज ब्रूअरी के निदेशक के रूप में मोयन ने परिवार के व्यवसाय की वैश्विक विस्तार में भूमिका निभाई। उन्होंने वैंकूवर में ब्रिटिश पैसिफिक प्रॉपर्टीज की सह स्थापना की और 1939 में खोले गए लायंस गेट ब्रिज के निर्माण का कमीशन दिया। एक परोपकारी के रूप में उन्होंने लंदन और डबलिन में आवास ट्रस्टों को वित्तपोषण में मदद की, ताकि कामकाजी परिवारों की स्थिति सुधारी जा सके। मोयन की जिज्ञासा और साहसिकता ने उन्हें राजनीति और वाणिज्य से परे ले जाया। एक उत्साही यॉटमैन और खोजकर्ता, उन्होंने कई परिवर्तित यॉट्स आर्फा, रोसलका और रोजौरा के मालिक थे और प्रशांत और हिंद महासागरों में अभियान चलाए। 1935 में उन्होंने ब्रिटेन में पहला जीवित कोमोडो ड्रैगन लाया और उनकी प्राणी और नृवंश विज्ञान संग्रह बाद में संग्रहालयों को दान कर दिए गए। उन्होंने वॉकबाउट, ए जर्नी बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस 1936 और अटलांटिक सर्कल 1938 लिखी, किताबें जो नृविज्ञान और अंतर सांस्कृतिक समझ में उनकी रुचि को प्रकट करती हैं। ऐतिहासिक संदर्भ: मध्य पूर्व और फिलिस्तीन संकट। वॉल्टर गिनीज, मोयन के पहले बैरन की हत्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश फिलिस्तीन मंडेट में बढ़ते तनावों के बीच हुई। 1942 से मध्य पूर्व में ब्रिटिश निवासी मंत्री के रूप में मोयन ब्रिटेन के साम्राज्य और तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में युद्ध रणनीति की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। इसमें 1939 के श्वेत पत्र को लागू करना शामिल था, जिसने फिलिस्तीन में यहूदी आप्रवासन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया, प्रति माह 1,500 आप्रवासियों तक सीमित। योजना और अपराधी। ब्रिटिश निवासी मंत्री की हत्या का विचार लेही के संस्थापक अब्राहम याइर स्टर्न से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने इसे ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रणाली के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रहार के रूप में देखा। 1942 में स्टर्न की मृत्यु के बाद योजना को नए लेही नेतृत्व के तहत पुनर्जीवित किया गया, जिसमें यित्साक शमीर इसराइल के भविष्य के प्रधानमंत्री शामिल थे। दो युवा फिलिस्तीनी यहूदियों एलियाहू हकीम 19 वर्ष और एलियाहू बेट सुरी 22 वर्ष को मिशन को अंजाम देने के लिए चुना गया। इस जोड़ी को न केवल उनकी प्रतिबद्धता के लिए चुना गया, बल्कि फिलिस्तीन के बाहर एक हमले के माध्यम से यहूदी कारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की उनकी क्षमता के लिए भी लेही की पहली विदेशी ऑपरेशन। लेही ने जानबूझकर मोयन को एक उच्च रैंकिंग आयरिश टन ने ब्रिटिश अभिजात वर्ग के रूप में निशाना बनाया, जिनकी मृत्यु पूरे साम्राज्य में गूंजेगी। योजना में समूह ने हत्या की क्षमता पर जोर दिया कि यह यहूदी पीड़ा को नाटकीय बनाए, ब्रिटिश प्राधिकार को चुनौती दे और ज़ायोनी संघर्ष को वैश्विक उपनिवेश विरोधी अभियान का हिस्सा दिखाए। हत्या एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध हमला। 6 नवंबर 1944 की दोपहर के शुरुआती समय में हकीम और बेट सुरी काहिरा के गीजीरा द्वीप पर मोयन के निवास के पास इंतजार कर रहे थे। लगभग 1:10 बजे मोयन की कार आई, जिसे लांस कॉर्पोरल आर्थर फुलर चला रहे थे और जिसमें उनकी सचिव डोरोथी ऑस्मंड और सहायक डे कैंप मेजर एंड्रयू ह्यूजेस ऑनस्लो थे। हत्यारे साइकिल पर आए। बेट सुरी ने फुलर को सीने में गोली मारकर तुरंत मार डाला। हकीम ने कार का दरवाजा खोला और मोयन पर 3 गोलियां चलाईं, एक ने उनकी गर्दन को कॉलरबोन के ऊपर मारा, दूसरी ने पेट को कोलन को छेदते हुए और रीढ़ के पास फंस गई और तीसरी ने उनकी उंगलियों और छाती को चढ़ दिया। मोयन को ब्रिटिश सैन्य अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन बाद में 64 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। हमलावर भाग गए, लेकिन मिस्र की पुलिस द्वारा पीछा किया गया। संक्षिप्त गोलीबारी के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और गुस्साए दर्शकों द्वारा लगभग लिंच कर दिया गया, इससे पहले कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। फोरेंसिक विश्लेषण ने बाद में उनके हथियारों को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ लेही की पिछले ऑपरेशनों से जोड़ा। तत्काल परिणाम: हत्या ने दुनिया को झकझोर दिया और सुर्खियां बटोरी। ब्रिटिश अधिकारियों ने अशांति के डर से यहूदी समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिशोध से परहेज किया, लेकिन पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा मजबूत की। मिस्र में लेही प्रचार के विपरीत कोई तत्काल लेही समर्थक प्रदर्शन नहीं हुए, हालांकि एक साल बाद नवंबर 1945 में काहिरा और अलेक्जेंड्रिया में यहूदी विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें और व्यापक संपत्ति क्षति हुई। ब्रिटिश खुफिया ने कॉपीकैट हमलों की संभावना की चेतावनी दी, चिंता जो फरवरी 1945 में मिस्र के प्रधानमंत्री अहमद माहिर की हत्या के साथ साकार हुई। घटना से प्रभावित लोगों में एक युवा मिस्री अधिकारी कमाल अब्दुल नासर थे, जिन्होंने कथित तौर पर हथियारों के साहस और उपनिवेश विरोधी दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। मुकदमा और फांसी। हकीम और बेट सुरी का जनवरी 1945 में मिस्री सैन्य अदालत में मुकदमा चला। उन्होंने कार्यवाही का उपयोग अपने कार्यों को राष्ट्रीय मुक्ति के लिए वैश्विक संघर्ष का हिस्सा बताते हुए जोशीले भाषण देने के लिए किया। उन्होंने मिस्र की अपनी क्रांतिकारी इतिहास पर साहित्य मांगा और अपनी वजह को भारत और आयरलैंड में साम्राज्य विरोधी आंदोलनों से तुलना की। दया की व्यापक अपीलों के बावजूद यहूदी समुदायों, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों और यहां तक कि एक भारतीय गांधीवादी से, जिन्होंने उन्हें जॉन ब्राउन और आयरिश रिपब्लिकनों से तुलना की, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। अपील खारिज कर दी गई और दोनों आदमियों को 22 मार्च 1945 को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश अधिकारियों, जिसमें राजदूत माइल्स लैम्पसन शामिल थे, ने आगे के हमलों को प्रोत्साहित करने के डर से फांसी को जल्दी अंजाम देने पर जोर दिया। विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रिया। वॉल्टर गिनीज विंस्टन चर्चिल के सबसे करीबी व्यक्तिगत मित्रों और राजनीतिक सहयोगियों में से एक थे। दोनों ने द अदर क्लब की सह स्थापना की और छुट्टियां साथ बिताईं, जिसमें 1934 की यॉट यात्रा शामिल थी। मोयन की मौत से चर्चिल तबाह हो गए, इसे कृतज्ञता का घृणित कार्य कहा। 17 नवंबर 1944 को संसद में अपने संबोधन में उन्होंने चेतावनी दी कि हथियारों की पिस्तौलों का धुआं नीति निर्धारित नहीं कर सकता। उन्होंने फिलिस्तीन के विभाजन पर चर्चा के लिए निर्धारित कैबिनेट बैठक रद्द कर दी और ज़ायोनी नेताओं के प्रति स्पष्ट रूप से ठंडे हो गए, डीजमैन के व्यक्तिगत संदेशों का जवाब देने से इनकार कर दिया। डीक्लासिफाइड पत्राचार चर्चिल के इस आग्रह को प्रकट करता है कि हत्यारों को कोई दया नहीं दी जानी चाहिए, एक स्थिति जो शोक और राजनीतिक करना दोनों को दर्शाती है। हालांकि चर्चिल ने ज़ायोनिस्ट के प्रति अपनी व्यापक सहानुभूति नहीं छोड़ी, हत्या ने उनकी दृष्टि को स्थायी रूप से बदल दिया। इसने व्यक्तिगत मित्रता को राजनीतिक दरार में बदल दिया और मध्य पूर्व में ब्रिटेन की स्थिति के नैतिक और रणनीतिक लागतों को रेखांकित किया। दीर्घकालिक प्रभाव और व्यापक निहितार्थ। लॉर्ड मोयन की हत्या के परिणाम तत्काल क्षण से कहीं आगे तक फैले। इसने ब्रिटेन और ज़ायोनी आंदोलन के बीच अविश्वास को गहरा किया, विभाजन के निकट प्रस्ताव को पटरी से उतार दिया और ब्रिटेन के मंडेट छोड़ने के अंतिम निर्णय में योगदान दिया। हिंसा की बात की वृद्धि 1947 में संयुक्त राष्ट्र विभाजन मतदान और 1948 में इसराइल की स्थापना में समाप्त हुई। इसराइल में वैश्विक रूप से आतंकवादियों के रूप में निंदा किए गए हत्यारों को राष्ट्रीय मुक्ति के शहीद के रूप में पुनर्कल्पित किया गया। 1975 में उनके अवशेषों को मिस्र से कैदियों के आदान प्रदान में वापस लाया गया और यरूशलेम के माउंट हर्जल पर पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ फिर से दफनाया गया। एक स्थायी छाया, ब्रिटिश इसराइली संबंध और शाही संबंध। लॉर्ड मोयन की हत्या की विरासत 1940 के दशक से बहुत आगे तक फैली, ब्रिटिश इसराइली संबंधों पर एक सूक्ष्म लेकिन स्थायी छाया डाली। इसके सबसे स्थायी प्रतीकों में से एक रानी एलिजाबेथ द्वितीय का इसराइल से उनके 70 वर्षों के शासनकाल में अनुपस्थित रहना था। 120 से अधिक देशों की यात्राओं और इसराइली नेताओं से कई निमंत्रणों के बावजूद उन्होंने कभी आधिकारिक राज्य यात्रा नहीं की। जबकि ब्रिटिश सरकार ने अरब सहयोगियों को अलग करने और क्षेत्र में व्यापार संबंधों को जोखिम में डालने से बचने के लिए इसराइल में शाही यात्राओं को हतोत्साहित करने की अनौपचारिक नीति बनाए रखी, व्यक्तिगत और ऐतिहासिक कारक भी भूमिका निभाते थे। मंडेट के दौरान ब्रिटिश कर्मियों पर ज़ायोनी उग्रवादी हमलों की स्मृति सबसे विशेष रूप से 1944 में लॉर्ड मोयन की हत्या, विंस्टन चर्चिल के करीबी मित्र ने राजशाही और ब्रिटिश स्थापना पर स्थायी छाप छोड़ी। मोयन की हत्या हिंसा की व्यापक अभियान का हिस्सा जिसमें 1946 का किंग डेविड होटल बम विस्फोट शामिल था जिसमें 91 लोग मारे गए जिनमें ब्रिटिश अधिकारी और नागरिक शामिल थे, ब्रिटेन के शासक वर्गों में कई लोगों के लिए विश्वासघात और हानि की अवधि का प्रतीक था। कुछ रिपोर्टें सुझाव देती हैं कि इन स्मृतियों ने रानी की निजी धारणाओं को आकार दिया। एक खाते में दावा किया गया कि वह मानती थी कि हर इसराइली या तो आतंकवादी है या आतंकवादी का बेटा, जो दर्शाता है कि इस तरह की घटनाएं ब्रिटिश अभिजात वर्ग की एक पीढ़ी द्वारा कितनी गहराई से आंतरिक रूप से स्वीकार की गईं, जिन्होंने फिलिस्तीन में साम्राज्य के हिंसक अंत को देखा था। परिणाम स्वरूप इसराइली अधिकारियों को बकिंघम पैलेस में व्यक्तिगत दर्शकों की शायद ही कभी अनुमति दी गई, संपर्क ज्यादातर बहुपक्षीय या औपचारिक आयोजनों तक सीमित रहे। लॉर्ड मोयन की हत्या की छाया इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक प्रोटोकॉल में फैल गई, यह दर्शाता है कि साम्राज्य के आघात दशकों तक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीकों से कैसे बने रह सकते हैं। निष्कर्ष। वॉल्टर गिनीज, मोयन के पहले बैरन की हत्या एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या से कहीं अधिक थी, यह एक भूकंपीय घटना थी जिसने फिलिस्तीन संघर्ष की दिशा को फिर से आकार दिया और ब्रिटेन के मध्य पूर्वी साम्राज्य के विघटन को तेज किया। मोयन एक सैनिक, राजनेता और सुधारक, प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादों के बीच संतुलन की तलाश करने वाले साम्राज्यवादी व्यावहारिकों की लुप्तप्राय नस्ल का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी मृत्यु ने एक संभावित मध्यस्थ को चुप कर दिया और सभी पक्षों पर रवैये को कठोर कर दिया। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के लेंस से देखा जाए तो विदेशी मिट्टी पर एक उच्च रैंकिंग विदेशी राजनयिक की हत्या को स्पष्ट रूप से आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आधुनिक परिभाषाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली नीति को प्रभावित करने के लिए गैर लड़ाकू अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर राजनीतिक हिंसा को आतंकवाद के रूप में पहचानती हैं, चाहे उद्देश्य या कारण कुछ भी हो। जबकि लेही ने अपने कार्यों को उपनिवेश विरोधी प्रतिरोध के रूप में फ्रेम किया, विदेश में एक नागरिक राजनीतिक नेता को निशाना बनाना आज के आतंकवाद की अवधारणा में पूरी तरह फिट बैठता है, जो क्रांतिकारी हिंसा और नैतिक वैधता के बीच स्थायी तनाव को रेखांकित करता है। संदर्भ: बारनेट, कोरेली, द कलैप्स ऑफ ब्रिटिश पावर, लंदन, मेथुएन 1972। बेन यहूदा, नचमन, Political Assassinations by Jews, A Rhetorical Device for Justice, Albany, State University of New York Press, 1993. Churchill, Winston S. The Second World War, Volume Y, Triumph and Tragedy, London, Castle, 1954. Cohen, Michael J. Churchill and the Jews, London, Frank S., 1985. Gilbert, Martin, Winston S. Churchill, The Prophet of Truth, 1922-1939. Boston, Houghton Mifflin, 1977. Hoffman, Bruce. Anonymous Soldiers, The Struggle for Israel, 1917-1947. New York, Knopf, 2015. Louis, William Roger. The British Empire in the Middle East, 1945-1951. Oxford, Clarendon Press, 1984. Porath, Yehuda. The Emergence of the Palestinian Arab National Movement, 1918-1929. London, Frank Kess, 1974. Schindler, Colin. A History of Modern Israel. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Wasserstein, Bernard. The British in Palestine, The Mandatory Government and the Arab-Jewish Conflict, 1917-1929. Oxford, Basil Blackwell, 1978. Wasserstein, Bernard. Herbert Samuel, A Political Life. Oxford, Clarendon Press, 1992. Wiesmann, Chaim. Trial and Error, The Autobiography of Chaim Wiesmann. New York, Harper and Brothers, 1949. Wistrich, Robert Ace. Zionism and Its Discontents, Essays on the Jewish Struggle for Statehood. New York, Oxford University Press, 2017. The Times, London. The Murder of Lord Moyen. Sampadkiya, 8 November 1944. Haaretz. The Death of Lord Moyen, Consequences for Zionism. November 1944. Hansard Parliamentary Debates. House of Commons, 17 November 1944, Volume 404. Royal Archives. Correspondence Relating to Middle East Policy and the Assassination of Lord Moyen, 1944-1945. Windsor Castle, Royal Archives Collection. Segev, Tom. One Palestine, Complete, Jews and Arabs Under the British Mandate. New York, Metropolitan Books, 2000. Smith, Charles D. Palestine and the Arab-Israeli Conflict, A History with Documents. Novin Sanskaran. Boston, Bedford St. Martin's, 2021.